So congratulations. Congratulations on building a very interesting business, and you have done pretty well in the last few years to grow. Maybe I would love to understand a little bit about, how did you got this business idea to start this kind of very unique business, and how you came across to the IPO when you IPO'd. How was the journey? It might be a good way to sort of
I
start.
will answer your first question. So
Yeah.
how I start and why I feel that we should be into the business of aircraft building equipment design and manufacturing. So what happened? We were in I was having the earlier company, and we were into the automation system. So automation, there are a lot of people are there in the automation. So how to make your steps into that market with the ऑटोमेशन? अगर 10 प्लेयर है तो आपको वो 10 प्लेयर को क्या आपने अलग देना है जिससे कस्टमर आपको ऑर्डर देगा? वो बोलेगा
डिफरेंशिएशन.
मैं 9 को भी दे सकता हूँ, आपको क्यों दूंगा? तो बिकॉज बिकॉज सभी लोग वो काम करते हैं ना, मैं भी करता हूँ, वो 9 लोग भी करते हैं. तो फ्रॉम
बराबर.
दैट आइडिया आई एलोबरेट माई माइंड, क्या ऐसा हम अलग करते हैं? तो पहले हमको समझ में आया कि क्या ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है. तो पहले मुझे लगा कि वी शुड हैव टू बी, हर हर आदमी उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जो उसको पहले आंख से अच्छा लगता है.
करेक्ट.
अगर हम कोई भी शॉप में भी जाते हैं तो पहले बाहर दिखा हुआ शर्ट देखते हैं, फिर जाते हैं अंदर, ये शर्ट अच्छा लग रहा है, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर बाकी सारा बहुत देखते हैं. तो द प्रोडक्ट विच इज योर अपियरेंस शुड लुक वेरी गुड. So how you can create the appearance of your product very good, and how you can make it different from others. So
इंटरेस्टिंग.
usse, others means you should elaborate your thought process in such a way, क्योंकि क्वालिटी देना है. अब ये सब्जेक्ट नहीं रह गया है. आई बिलीव कि अब मैं अच्छा क्वालिटी देता हूँ, ये स्टेटमेंट को कोई लॉजिक नहीं है. तो तुम मार्केट में क्यों है फिर? ये तो पैसा, आपको पैसा कस्टमर इसलिए दे रहा है कि आपको अच्छा क्वालिटी देना है, तो इसका कोई
बेसिक
मतलब
नीड
नहीं
है,
रह गया. हाँ,
बेसिक रिक्वायरमेंट है.
तो उसके कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं रह जाता है. तो फिर मैंने क्या
बराबर.
किया कि हमने, और सबसे बड़ा बात है कि यू प्रोडक्ट को एस्थेटिकली इंप्रूवमेंट देने के लिए यू हैव योर बेसिक पार्ट्स विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट बिल्ड दैट इक्विपमेंट, उसका दिखना अच्छा जरूरी है. अगर एक अच्छा दिखेगा तो पूरा बड़ा बनेगा, वो भी अच्छा दिखता है. तो
परफेक्ट.
हमने बोला कि वो एक, मतलब अगर एक असेंबली में 100 पार्ट है और 100 के 100 अच्छे बनेंगे तो वो इक्विपमेंट तो अच्छा ही दिखने वाला है. तो
बराबर.
अब ये 100 बनाने वाले लोग कौन है? हमारी टीम है. तो फिर टीम को ऐसा हम क्या देंगे जिससे वो पार्ट को एक फील देगा खुद का पैशनेटली? और जब पैशनेट फील आता है तो फिर पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, थॉट प्रोसेस अलग बन जाती है. तो फिर जब हमने ये स्टार्ट किया था 2012 या 2013 में, शायद मुझे ये कुछ दिमाग में आया था. तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एरोस्पेस का एक छोटा सा काम कुछ करें, तो लोगों को बोल देंगे कि हम एरोस्पेस का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्राइड का बात होगा. क्योंकि 2012 में कोई एरोस्पेस का काम कर रहा है, ऐसा कोई कंपनी बहुत, मतलब बहुत रेयरली मिलता था. 10 साल, आज से हम अगर 10-12 साल पीछे जाते हैं तो इट इज. तो फिर हमने क्या किया, एक कंपनी से टाटा एडवांस का ही छोटा, पहले टाल करके कंपनी था, उनको एक छोटा सा इटली का कंपनी का ऑर्डर मिला था. तो उसमें वो फिक्सर बनाते थे, और फिक्सर के छोटे छोटे पार्ट. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर एक 2-4 पार्ट हमें बनाने को दे दो, तो हम आपको अच्छा क्वालिटी में कर सकते हैं, हमें भी पता चलेगा कि वो क्या ऐसा होता है उसमें अलग, कि रेगुलर इट इज अ इंजीनियरिंग पार्ट.
बराबर
तो मैं आज इंजीनियरिंग पार्ट बनाता हूँ फॉर डिजाइन एंड फिक्सरिंग फॉर एरोस्पेस, एंड एक पार्ट बनाता हूँ ऑटोमेशन में. उसमें ऐसा क्या मतलब अलग होता है? तो फिर हमने देखा, तो हमने वो ऑर्डर लिया एक छोटा सा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द वैल्यू, आई डोंट केयर फॉर द वैल्यू एट दैट टाइम. तो
है.
वो ऑर्डर लेने के बाद फिर हमने सप्लायर टीम का मीटिंग लिया छोटा सा कंपनी में, और उनको बताया कि अब हम एरोस्पेस का काम करने वाले हैं. तो ऑल ऑफ सडन एवरीबडी फील प्राइड कि हमारा कंपनी एरोस्पेस का काम कर रहा है. तो उसके बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट को, जब भी वो प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, जब वो मूवमेंट होती है, इट इज अ प्रोसेस ना, रॉ मटेरियल से कन्वर्जन ऑफ ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2, ऑपरेशन नंबर. तो वो जब पार्ट वो लेके बनाता था और वो जो दूसरे को जब हैंड ओवर करता था तो बोलता था कि हम एरोस्पेस का काम कर रहे हैं, जरा संभाल के बनाना. तो ये जो ओनरशिप ओनरशिप का फीलिंग आ गया ना, वहां से हमारा ऑटोमेशन प्रोडक्ट का आउटपुट निकला, मतलब ये
हाँ
हमने लिया था सिर्फ कि हमारा ऑटोमेशन का क्वालिटी इनहेंस अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए हम ऑटो एरोस्पेस का काम लेते हैं। हमें मालूम भी नहीं था एरोस्पेस क्या है, तो हम इसलिए उनको प्राइड देते हैं तो वो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर ऐसा समझ में आ गया कि पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद द सेम कॉस्ट विच वी यूज टू बी इनकर्ड अर्लियर ऑल्सो। तो इट इज जस्ट अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम मेकिंग अ थॉट प्रोसेस, कन्वर्टिंग दैट थॉट फ्रॉम मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट, आइदर इट इज एरोस्पेस और इट इज ऑटोमेशन, डोंट मेक अ डिफरेंस ऑफ इट। तो उसके वजह से आउटकम जो निकला इट वॉज ट्रिमेंडस। तो वो जो ऑटोमेशन सिस्टम बना वो एस्थेटिकली एकदम से ऐसा एकदम क्रिएटिव आइटम हो गया। काम वही करता
अच्छा
है, सेम काम करेगा वो जो हमारा। तो वो जो वहां से जो प्रोडक्ट का डिजाइन निकला बाहर, वो हमें फिर बहुत एलोबरेट हो गया और हमें लगा कि ये अच्छा है। हम ऑटोमेशन को और इसी इसी कल्चर को हमने ऑटोमेशन के लिए फॉरवर्ड किया। तो वहां से फिर वो एस्थेटिक लुक से हमें, एक तो हमारा जॉइंट वेंचर हुआ फॉरेन कंपनी के साथ, मैं मेरा अर्लियर कंपनी का बात कर रहा हूँ। फिर हमारा वॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसे बड़े कंपनी के साथ में हमने काम करना शुरू किया। तभी टाटा मोटर्स और महिंद्रा का कैटेगरी, और अगर मैं वीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू कैटेगरी, अगर मैं एक सप्लायर हूं, मैं अगर वीडब्ल्यू में काम करता हूँ और मैं बीएमडब्ल्यू के काम करता हूँ तो आपका देखने का नजरिया, और मैं अगर टाटा और महिंद्रा के लिए काम करता हूँ तो आपका एक एंगल डिफरेंस हो जाएगा।
सही बात है।
तो वो क्वालिटी लेवल पे हम लोग पहुंच गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। तो फिर क्या हुआ, वहां से पता चला कि चलना क्यों ना अभी छोटा छोटा पार्ट करते रहते हैं, सप्लायर को अपना टीम मेंबर को लगने दो कि हम एरोस्पेस का काम कर रहे हैं। तो वहां से फिर हमने धीरे धीरे उसका छोटे छोटे कंपोनेंट फिक्सचर के छोटे छोटे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया और हम वो कंटिन्यू करते रहे।
और ये जो आप फॉक्स वेगन एंड बीएमडब्ल्यू का बोल रहे हैं, वो ऑटो पार्ट्स बनाते थे आप
नहीं, हम लोग
ऑटोमेशन रिलीज
ऑटोमेशन सिस्टम बनाते थे।
उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए?
हमने पोलो का इंजन असेंबली लाइन बनाया, हमने वेंटो का इंजन असेंबली लाइन बनाया, हमने A4 का
अच्छा
इंजन असेंबली लाइन बनाया, हमने Q7 के लिए इंजन असेंबली लाइन बनाया औरंगाबाद में स्कोडा के प्लांट में।
हाँ
सो दैट इंजन असेंबली लाइन, दैट ऑटोमेशन वाज इन आवर ब्लड एट दैट टाइम।
अच्छा
तो फिर हमने
एंड
साथ
वो
में फिर एरोस्पेस का भी काम छोटा छोटा चालू कर दिया।
समझ गया समझ गया समझ गया।
तो वहां से
इंटरेस्टिंग
हमारा एरोस्पेस का थॉट प्रोसेस एलोबरेट हो गया और फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया। तो तभी ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कब ये कन्वर्जन होगा, लेकिन एक आई डोंट नो, एक एक बिजनेस एक एंटरप्रेनर का एक इंस्टिंक्ट होता है ना हमेशा।
हाँ
मैं मेरे इंस्टिंक्ट को बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब आपने कुछ ही चीज को 10 बार आपके इंस्टिंक्ट से फॉलो किया है और दस में
बराबर
से
एंड इट
आपको
हैज
अगर
वर्क इट हैज
और
वर्क
दस दस में से आपको अगर 8 में सक्सेस मिला है तो यू हैव टू बिलीव योर इंस्टिंक्ट। ये मेरा एक ओवरऑल कैलकुलेशन है एज एन प्रमोटर, एज एन एंटरप्रेनर। तो उससे
वेरी
मैं
गुड।
सोच तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो आई एम ऑन ट्रैक। तो फिर वहां उसी टाइम में मैंने स्टडी किया था कि क्या एरोस्पेस इंडस्ट्री होगा इंडिया में। आज से मैं 10-12 साल पहले का बात कर रहा हूँ और एक अच्छा लगा था काम करने को, फील आ रहा था एक पैशनेटली अच्छी काम कर रहा है ऐसा कुछ, एक कंपनी में भी मोमेंटम क्रिएट हो रहा था। तो फिर
वेरी
उसकी
गुड
वजह से उसकी वजह से हम लोग ने एरोस्पेस का काम चालू रखा और साथ में
वेरी गुड
ऑटोमेशन भी कर रहे थे। तो
बराबर ठीक
एक साल ऐसा आया था कि हमारा मैं आपको 2017 का बात कर रहा हूँ, हमारा टर्नओवर 19 करोड़ था, हमने 53 करोड़ अचीव किया विद आफ्टर दैट एक साल में।
अच्छा
सो आई
वाह
ग्रो एंड दैट वॉज हैपन बिकॉज ऑफ द एरोस्पेस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड फ्लोइंग इन 2016-17 वेन द फर्स्ट बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ इंडियन एयर फोर्स हैज गिवन टू टू बोइंग, दैट इज कॉल्ड द 16 नंबर ऑफ एपेचे एंड 17 नंबर ऑफ चिनुक हेलीकॉप्टर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द टर्न अराउंड फॉर द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। वहां से फिर हमारा ग्रोथ स्टार्ट हो गया।
सो यू सप्लाई डायरेक्टली टू बोइंग और डिड यू सप्लाई टू एचएएल?
नो नॉट एचएल, आई एम सप्लाइंग डायरेक्ट, आई एम राइट नाउ नॉट सप्लाइंग डायरेक्टली टू बोइंग, आई एम सप्लाइंग टू देयर टीयर 1 सप्लायर,
ओके सो
बट
ये
वी आर इन
चिनुक
डिस्कशन।
चिनुक चिनुक हेलीकॉप्टर का जो बड़ा ऑर्डर आपने किया 2018 में, दैट वाज टू बोइंग डायरेक्टली और टू टीयर वन
नो
सप्लायर?
टाटा 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 बोइंग,
अच्छा, टाटा बोइंग, ओके, करेक्ट करेक्ट.
टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड इज अ कंपनी एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग चिनुक फॉर देम, अपाचे
अच्छा,
चिनुक
वन.
जो भी
सो टाटा इज फॉर विद बोथ एयरबस एंड बोइंग बोथ,
है. यस बोथ.
एंड यू हैव फाउंड दैट कस्टमर एज अ एंट्री पॉइंट टू गेट इन टू एरोस्पेस,
यस एग्जैक्टली, क्योंकि
करेक्ट?
बहुत बिकॉज एयरबस बोइंग इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किधर भी जाओ और मिल जाएगा, उसके लिए एक प्रिपरेशन होना जरूरी है. हमें खुद को
बहुत लंबा
तैयार,
प्रोसेस है, बहुत लंबा
हाँ
प्रोसेस है.
हमें खुद को तैयार करना है वो लोगों के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए और उनका डायरेक्ट वेंडर कोड लेने के लिए. और वो तैयारी, जब तक मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, किसी में पैर मत डालो, हाथ मत डालो, तो आई
परफेक्ट,
डोंट
बराबर.
आई बिलीव कि देर शुड नॉट बी एनी फेलियर. तो हम पूरे रेडी हो जाएंगे. हम टाटा का काम, अभी हमको बोइंग भी जानने लगा है, हमको एयरबस भी डायरेक्ट जानता है, दे नो अस वेरी वेल. तो अभी थोड़ा रोड इजी हो गया है हमें एयरबस में जाने के लिए. सो लेट अस होप सो कि आगे के 1 साल में विल गेट अ डायरेक्ट वेंडर कोड फ्रॉम एयरबस. ऐसा दिख रहा है, ऐसा मुझे. हाँ
समझ में आ रहा है, फोरसी फोरसाइट.
यस यस
तो मुझे ये बताइए कि ये जो मुझे मुझे थोड़ा समझ में आया है, आई मेट राकेश चोपदार ऑफ आजाद इंजीनियरिंग, यू नो, फ्यू मंथ्स बैक, एंड आई स्टडीड दैट कंपनी वेरी वेल, एंड वी ओन दैट कंपनी ऑल्सो, वी हैव अ स्टेक इन दैट कंपनी. मैंने जो थोड़ा समझा है, हाइको करके यूएस की कंपनी है, मैंने जो थोड़ा स्टडी किया, ये बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है, बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड है,
बिल्कुल.
एक एक पार्ट के लिए अप्रूवल होता है, पार्ट बाय पार्ट अप्रूवल होता है, तो बड़ा कठिन जर्नी है ये. तो आपने इसको फ्रॉम ऑटोमेशन असेंबली लाइन टूलिंग लाइन इज रिलेटिवली मच इजियर कंपेयर टू एरोस्पेस पार्ट्स रिक्वायरमेंट, तो थोड़ा वो समझिए आपका प्रोग्रेशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स दिस एरोस्पेस वेरी क्रिटिकल, यू नो, एप्लीकेशन, डिफिकल्ट टू गेट अप्रूवल, आपने कैसे वो जर्नी ट्रेवल किया?
सर पहले तो हमने ये कंपनी जब एस्टेब्लिश किया ना, तो हमने एरोस्पेस से ही स्टार्ट किया 2018 में, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होता है, यू नीड टू इंटीग्रेट लॉट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक, और सबको फिर एक मैकेनिकल सिस्टम से जोड़ दो, फिर एक लाइन बनता है. तो उसमें
बराबर है.
बहुत बहुत इट्स अ ह्यूज फंडिंग्स रिक्वायर, बिकॉज टू यू हैव टू प्रोक्योर एवरीथिंग आइदर फ्रॉम सीमेंस और फ्रॉम मित्सुबिशी और फ्रॉम एमरॉन, और देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आर देयर. तो वो खरीदने
करेक्ट,
के लिए तुमको उनको अपफ्रंट पैसा देना पड़ता है, और वो ऑटोमेशन लाइन है कि वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना चलता है, तो वो होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है. तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले हमारे स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जो कि मैकेनिकल है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पूरा, जिसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगता है. और हमारे 2018 में ही हमारा एक थॉट प्रोसेस बन चुका था कि हम ऑटोमेशन में तो आएंगे पक्का है. तो उसके बाद फिर 1 साल पहला बहुत अच्छा चला, 19 वॉज वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वी वेर इन द ओनली इंडस्ट्रीज विच इज डिफेंस एविएशन, और कोविड की वजह से
कोविड,
एविएशन पूरा ब्रेक डाउन हो गया, और वो एक
बराबर है.
दैट वॉज द मेजर सेटबैक इन दैट इंडस्ट्री. और वो इतना डाउन आया कि हमें बहुत चैलेंज हो गया. और हमारा बेसिकली क्या था कि हमारा कैपिटल गुड्स है ना, हमारे गुड्स से लेके वो लोग उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं या डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाते हैं, तो उन्होंने पहले ही ब्रेक मार दिया कि कैपिटल गुड्स को हम होल्ड करेंगे. और कभी भी ऐसे ही होता है, जो भी
बराबर,
कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और एक तो ये बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, आपको बहुत मशीनरीज लगते हैं, तो फिर
बराबर.
इसलिए वो सेटबैक बहुत बड़ा बैठा. फिर हमने बट स्टिल माई इंस्टिंक्ट की अगर कुछ भी होगा तो ये इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत डिफरेंट लेवल पे आगे जाएंगे, ऐसा मुझे पता था ऑल टाइम में. तो मैंने हमने सस्टेन करने का डिसीजन लिया एट एनी कॉस्ट. तो ये जो सस्टेन एट एनी कॉस्ट वाला जो मैटर है वो बहुत बड़ा इम्पेक्ट कर गया. एनी कॉस्ट मतलब फिर तो उसके लिए कुछ भी ना, घर बार बेचना पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिलेंगे नहीं, लेकिन हिलेंगे नहीं है इंडस्ट्री से. एंड दैट वॉज द एग्जैक्टली वॉट वी डिड. और रिकॉग्निशन आया हमको वर्टिकल स्टेबिलाइजर 737 से, वो जो हमने असेंबली लाइन बना के दिया टाटा बोइंग को, वो हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हो गया. तो मतलब कोई नहीं था
वर्टिकल
इंडिया,
स्टेबिलाइजर, वर्टिकल स्टेबिलाइजर फॉर,
737 मैक्स.
अच्छा, इट इज अ बिग वन।
या वो जो पीछे रहता है ना, जिस बैक में ऐसा वर्टिकल एकदम एंड में एयरक्राफ्ट के,
हाँ मालूम है, ऐसा पूंछ
ऐसा
पूंछ जैसा ऐसा। हाँ
हाँ ऐसा, और दो ऐसा रहता है,
करेक्ट करेक्ट
दो साइड में रहते हैं, एक ऐसा वर्टिकल होता है,
करेक्ट, आई नो, लाइक अ टी,
दिस
उल्टा टी,
इज, सो दिस
उल्टा
इज
टी।
वर्टिकल, यस उल्टा, यू कैन से यस, उल्टा टी। तो
हाँ उल्टा टी।
जो वर्टिकल था ना, वो हमको असेंबली लाइन का ऑर्डर मिला, और वो हमने इतना, मतलब इवन बोइंग पीपल वेर अमेज्ड विद द क्वालिटी विच इंडिया कैन प्रोड्यूस। अब मैं मेरा नाम नहीं लूंगा, बिकॉज वी आई एम अ पार्ट ऑफ अवर इंडियन नेशन, एंड वी हैव, वी वेर एट दैट टाइम वी रिप्रेजेंटिंग अवर इंडिया इन टर्म्स ऑफ
करेक्ट
मेकिंग द फिक्सचर्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया, द बिगेस्ट पार्ट बोइंग गिवन फर्स्ट टाइम इंडिया ऑल्सो, वी आर द फर्स्ट सप्लायर फॉर दैट असेंबली लाइन, एंड कस्टमर इज ऑसम हैप्पी। मतलब इससे
और
बढ़िया हमें रिसेप्शन नहीं मिला, क्योंकि जब रतन टाटा एंड निर्मला सीतारामन वॉज देयर वेन दे इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हेलीकॉप्टर ऑफ चिनूक, वी आई एम द ओनली इन्वाइटी बींग एज ए सप्लायर।
वाह,
सो बहुत सारा टाटा के साथ हमारा एक माइलस्टोन है। नंबर वन, व्हेन दे स्टार्टेड चिनूक बिल्डिंग इन इंडिया, वी वर द ओनली सप्लायर फॉर दैट फर्स्ट सप्लायर। टाटा टेक्नोलॉजीज, व्हेन दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अदर देन द डिजाइन, वी आर द फर्स्ट सप्लायर। व्हेन 737 वर्टिकल स्टेबिलाइजर मैन्युफैक्चर, वी आर द फर्स्ट सप्लायर। व्हेन C295, दिस इज व्हाट एयरक्राफ्ट, वी अमंग मेनी ऑफ द सप्लायर, बिकॉज वो कंटेंट बहुत बड़ा था, एज अ वन कैन नॉट डू इट, इम्पॉसिबल था।
श्योर, नो, वंडरफुल।
सो
सो आई थिंक टाटा, योर रिलेशनशिप विद टाटा स्टार्टेड विद टाटा इन एरोस्पेस, एंड दैट इज ओपनिंग मेनी डोर्स फॉर यू, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड,
यस
राइट? वेरी
यस
गुड वेरी गुड। नाउ ये जर्नी में आपने अच्छा ट्रैवल किया, मीन कोविड के बाद में। नाउ लास्ट 2-3 ईयर परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट ड्रामेटिकली।
यस
22 में लॉस था 6 करोड़ का, उससे अभी 5 करोड़ प्रॉफिट पे आ गए हैं। तो थोड़ा कोविड का एक इम्पैक्ट तो समझ में आता है, उसके अलावा व्हाट चेंज? योर मार्जिन्स आल्सो आर नाउ रीजनेबली हेल्दी एज
वी
वेल,
एंटर्ड
सो
इन, तो कोविड से हमें एक सीख लिया कि एक सेक्टर चाहिए जो तुम्हें सर्वाइवल कर सकेगा। तो हमने व्हाट व्हाट कैन ऑटोमेशन कैन नॉट बी बेटर देन दिस, क्योंकि हमें पता ही था ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी किया हुआ था। तो उस टाइम में फिर वी एंटर्ड विथ IDBI कैपिटल, सो दे इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी बीइंग एज अ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो वहां से फिर हमने ऑटोमेशन स्टार्ट किया, और हमें ऑटोमेशन में गोदरेज का फ्रंट फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 7 करोड़ का, एंड दैट वाज द बिग जंप इन आवर ऑर्गेनाइजेशन।
सो व्हेन यू
तो
से ऑटोमेशन निमेश जी, यू मीन फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रोडक्शन
हाँ, मैं आपको समझाता,
असेंबली असेंबली ऑटोमेशन,
आई
इज
विल गिव
दैट
यू
द राइट
लेमेन,
वे टू?
यस। सो अभी जैसे के गोदरेज स्टार्टेड देयर, वांटेड टू स्टार्टेड द असेंबली लाइन फॉर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। ज्यादा करके हमने देखा है कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन IFB का आता है या बॉश का
बराबर
आता
है।
है, और किसी का नहीं था। तो नाउ गोदरेज ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, सो उन्होंने अपना खुद का एक डिजाइन बनाया, और वो डिजाइन में अलग अलग पार्ट होते थे। तो अब जब पूरा वॉशिंग मशीन डिसमेंटल करोगे तो देयर आर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो पहले
श्योर
पार्ट बनाना पड़ता है, पार्ट बनाने के बाद उसको वॉशिंग मशीन से असेंबली करना पड़ता है, फिर उसका आपका एक वॉशिंग मशीन रेडी होता है। तो ये तो हो गया एक वॉशिंग मशीन का, लेकिन आपको अगर उनका टारगेट है 2 मिनट में एक वॉशिंग मशीन बनाना है, तो उसके लिए फिर ऑटोमेशन लगता है। तो उन्होंने फिर एक RFQ रिलीज किया, कि उन्होंने बताया हमें कि ये हमारे इतने कॉम्पोनेंट है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट है असेंबली है, और ये हमारा लास्ट असेंबली है। अब इसके बीच का पूरा एंटायर सिस्टम आप मुझे डिजाइन करके दो, जिससे हमारा पूरा वॉशिंग मशीन 2 मिनट में असेंबली होगा। तो फिर हमने पूरा स्टडी किया कि 2 मिनट में असेंबली करने के लिए कहाँ पे रोबोटिक करना पड़ेगा, कहाँ पे टेस्टिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग का टाइम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ पैकिंग को हम कितना टाइम दे सकते हैं। तो ये सब चीज अलग अलग स्टडी करके फिर हमने एक डिजाइन कंसेप्ट बनाया, वो कंसेप्ट हमने उनको प्रेजेंट किया, एंड देन दे एग्री एंड एक्सेप्टेड कि यही तरीका होता है ऑटोमेशन में जाने का। आपको एक कंसेप्ट मिलता है, वो कंसेप्ट से आप एक डिजाइन क्रिएट करते हो,
करेक्ट
और
करेक्ट,
वो आप उनको बताते हो, और वो कन्विंस होते हैं, फिर आप कोटेशन देते हो, एंड देन यू गेट द ऑर्डर, एंड देन यू इम्प्लीमेंट। तो हमने वो पूरा लाइन असेंबली हमारे कंपनी में किया, यहाँ पे
अच्छा
हमने पूरा ट्रायल लिया, हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन बनाया,
वाओ
एंड देन वी डिसमेंटल दिस असेंबली लाइन हियर इन आवर
एंड पुट
कंट्री
इट देयर
अगेन एंड पुट इट इन देयर प्लांट एंड देन दे असेंबली. सो वी हैव अ 2 ईयर वारंटी, इट्स ऑलरेडी डन नाउ. सो दैट वॉज द बिगेस्ट ऑटोमेशन
तो
ब्रेक
ये
थ्रू आज.
इसका मतलब ये हुआ यू गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन
यस
इन
आप
मेंटेनेंस भी
पहले,
आपके पास ही रहता होगा
यस हम अगर हम उनको बोलते हैं पहले ही से कि ये पार्ट इतना इतना साल चलेगा, ये पार्ट इतना महीना चलेगा, आपको ये महीने में ये रिप्लेस करना है. जैसे कि आज के बोलते हैं ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब वी नो हाउ मेनी टाइम यू ऑपरेट दिस पार्ट एंड कहाँ पे आपको बदलना है, वो हम उनको पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं.
तो ये एक पूरा प्लांट आपने ये जो दिया ऑटोमेशन सिस्टम वो क्या रेवेन्यू होगा मतलब एक सिस्टम पूरा दिया आपने जो गोदरेज
अभी
को
जो मैंने दिया था वो 6.5 करोड़ के आसपास था.
अच्छा वेरी नाइस समझ गया और उसमें उसमें अपने को ये तो वन टाइम हुआ प्लस अपने को मेंटेनेंस का भी कुछ अलग से मिलता होगा बट वो तो छोटी अमाउंट होगी
वो 2 साल के बाद होता है. वो हमारे कंसिडरेशन सर. सबसे बेस्ट थिंग व्हाट आई लर्न इन दिस, कस्टमर को जितना अच्छा कम मेंटेनेंस करना पड़े उतना सबसे अच्छा है. दैट्स व्हाट माय
एब्सोल्युट
टारगेट. क्यों क्यों
परफेक्ट
उसे खर्चा करना पड़े चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए?
बराबर एकदम सही
हमें सर्विस करके पैसा नहीं कमाना है, हमें कस्टमर को
सर्विस
बोलना है कि तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा.
फ्री
क्यों
रखना
हमें वो रेवेन्यू पे ध्यान रखना है?
है बराबर
और
है
अल्टीमेटली
बराबर
जो चीज वियर एंड टियर है वो तो करना ही है.
बराबर है बराबर है
तो वो व्हाई वी शुड
ये
हैव फोकस ऑन दैट बिजनेस.
करेक्ट तो ये जो आपका ऑटोमेशन था वो 10% ऑफ रेवेन्यू था FY22 में मैंने DRHP पढ़ा वो
22
40 का
हाँ
अभी हो गया 24 में करेक्ट
बरोबर करेक्ट.
तो आपने उस पर काफी फोकस किया है दैट इज वन
तो वी हैव अ
सो ये
सेपरेट
जो
टीम.
हाँ तो अभी ये जो मिक्स है 60-40 का 60 एरोस्पेस है एंड 40 ऑटोमेशन है तो ये मिक्स आने वाले 2-3-4 साल में क्या रहेगा 50-50 हो जाएगा कि
नहीं,
एरोस्पेस बढ़ेगा
ऐसा लग रहा है एरोस्पेस बढ़ेगा, इनका 25% में आएगा. क्योंकि क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा ना. अगर अगर आप 50 करोड़ में, जस्ट आई एम रफली गिविंग एन
चल
एग्जाम्पल, आप
चल
50 करोड़ में अगर 25 करोड़ करते हो तो 50-50 होता है. लेकिन
बराबर है
आप सब 75 करोड़ में 25 करोड़ करते हो तो 33 हो जाता है.
बराबर है ऑफ कोर्स
तो सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, क्योंकि ये बहुत सेक्टर, डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर बहुत स्ट्रांगली आगे आ रहा है अभी. और
बराबर है
मुझे सो वी आर वी बिलीव दैट कि हम अभी ये नए इन्वेस्टमेंट से हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी पे आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली आजाद इंजीनियरिंग का मेन सेक्टर है अभी आज के डेट में,
करेक्ट
जो कि वो 10 साल से करते आ रहा है अभी
एयरफॉइल्स उनका मेन है
मेन है. तो अभी हम उस सेक्टर में अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं लगेगा. क्योंकि हमने क्या किया था, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया.
करेक्ट
इट इज सो डिफिकल्ट एज यू सेड करेक्टली. हर एक पार्ट का वेरिफिकेशन 10 बार होता है, हर एक पार्ट का डॉक्यूमेंटेशन 10-10 साल रखना पड़ता है. तो इसलिए वो क्रिटिकल फेस है. तो अगेन द थॉट प्रोसेस इज कि अगर हम घुसेंगे तो फिर पक्का होने के बाद ही घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे. तो अभी हमने क्या किया, टूलिंग और MRO और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट में जाने से वी अंडरस्टूड द कल्चर ऑफ द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज वेरी
करेक्ट
वेल नाउ. तो अब हम
बराबर है
तैयार हो गए हैं ये सेक्टर में जाने के लिए. दैट इज द रीजन वी स्टार्ट एंड वी स्टार्टेड विद द HAL. तो वी गॉट अ बिग ऑर्डर राइट नाउ फ्रॉम HAL, येट वी डोंट हैव अ मशीनरी फॉर दैट.
अच्छा
मीन्स वी हैव अ मशीनरी, बट यू बिकॉज मशीनरी फॉर द टूलिंग इज द सेम, मशीनरी फॉर द पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलमोस्ट द सेम. क्योंकि अल्टीमेटली पार्ट ही बनता है ना.
बराबर बराबर
लेकिन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक ही पार्ट बार बार बनता है. टूलिंग में क्या होता है, एक ही पार्ट एक ही बार बनता है, दूसरे बार दूसरा पार्ट बनता है. तो फर्क इतना ही
बराबर
है, बट मशीनरी वही है. तो
बराबर बराबर तो
हमने
ये जो HAL का ऑर्डर आपको मिला निमेश जी वो कितना बड़ा है ये जिसका भी
सर
मशीनरी नहीं है अपने पास
अभी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करता हूं मैं, बट
ठीक है
परसेंटेज में आप देखोगे तो हम लोग इट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट.
अच्छा अभी तो सिंस उस पे है तो मैं ये पूछ लू आपको अभी अपना ऑर्डर बुक क्या है
आज के डेट में हमारा 20 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी है. 21-22 हो चुका है और
ओके
शायद दिसंबर नवंबर एंड तक या दिसंबर सेकंड वीक तक हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू का प्लानिंग खत्म हो जाएगा. सो आवर मार्केटिंग एंड सेल्स टीम विल गेट 105 क्लियर डेज टू वर्क फॉर द नेक्स्ट ईयर टर्नओवर.
अच्छा, मतलब उतना सिक्योर्ड ऑर्डर अपना है, मार्च 25 तक
हाँ
का ऑर्डर है।
यस यस,
समझ गए समझ
वो
गए।
नेक्स्ट ईयर का ऑर्डर पे वो काम करेगी. और जब हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वो ऐसा नहीं होता है कि आज आपको पार्ट दिया तो वो 5 साल तक फिर वो आपको ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर बहुत काम किया होता है. तो
करेक्ट करेक्ट।
वंस यू एंटर इन टू दैट सेगमेंट देन यू नीड नॉट हैव टू वरी. आपके आपकी सोच, वो सोचता है कैसा आपको लेके जाना है आगे. तो
करेक्ट, एकदम
ये सब
एकदम सही।
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दिस इंडस्ट्री टू वर्क विथ. तो हम वही सोच रहे हैं कि ये मशीनरी के साथ में हम एक बार ये सेगमेंट में चले गए तो मुझे लग रहा है 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर हम लोग सब्सटेंशियल आगे निकल जाएंगे. सो दैट आगे का रोड मैप कैसा बनाना है वो फिर हमको प्लान करना पड़ेगा.
समझ गए। तो उसमें मैं आपका विद इन अपन ने वी हैव रेज द मनी आईपीओ का, बराबर है। अपन ने 36 करोड़ रेज किए, करेक्ट। उसमें से 20 करोड़ कैपेक्स के लिए है, बराबर है।
करेक्ट,
तो वो 20 करोड़ कहाँ लगाने वाले, हम किस चीज में लगाने वाले?
द सेम प्लांट वेर वी आर सिटिंग राइट नाउ, वेर आई एम
हाँ,
सिटिंग,
उधर
वहां पे
उधर
सब,
एक्सपेंशन करेंगे।
हाँ सब मशीनरी आएगा वहां पर.
तो इसको मैं कैसे समझू, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे ऐसा समझे, अभी अभी प्लांट का समझो, 1 यूनिट का कैपेसिटी है, 100 यूनिट का कैपेसिटी है, तो डबल होगा, 50% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, ये 20 करोड़ लगाने से,
सर जैसे
मोटा
कि
मोटी।
हमने हमारा प्रोडक्ट जो है ना आज के डेट में वी आर
हाँ जी, करेक्ट
थ्री इन एविएशन. सो वी हैव टू डिवीजन, वन इज एविएशन, अनदर इज ऑटोमेशन. सो
करेक्ट
दिस बोथ द डिवीजन इज एंटायरली सेपरेट, देयर इज नो
करेक्ट,
इंटरेक्शन विथ ईच अदर बिकॉज दोनों का कल्चर अलग है.
बराबर है।
हम एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते हैं और ऑटोमेशन का कोई भी कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस नहीं होता, हम सब बाहर से करके लेते हैं
अच्छा,
क्योंकि वो
हाँ
अवेलेबल है, बाहर मिलते हैं लोग.
बराबर बराबर,
तो
दोनों
अभी
अपन
क्या होता है,
मेहनत
हाँ
करने का।
तो और एविएशन में भी हमारा 3 सेगमेंट है. वन इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूलिंग सिस्टम्स फॉर द वे मैन्यू बिल्डिंग द एयरक्राफ्ट, सेकंड इज ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, थर्ड इज एमआरओ.
करेक्ट।
तो ये तीनों सेगमेंट का, ये तीनों सेगमेंट का मिलके एक हम लोग एविएशन में, और हमारा चौथा अभी ऐड हो रहा है दैट इज अ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो वो कैसे होगा कि जैसे जैसे ईयर ऑन बढ़ते जाएगा वैसे वो बोल रहे हैं ना, आज वो 4 नंबर पे है, कल वो 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा, एंड देन वी विल बी द मेजर. हमारा मेजर कंटेंट है सब पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आएगा और फिर आगे का स्टडी देखेंगे कि हम उसको पार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अलग सेक्टर बना के अलग ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करके और एक कंपनी स्टेबल करेंगे या इसी में कंटेंट करेंगे अब तक. लेकिन ये है कि पूरा डिवीजन अलग होगा, आज ही अलग है. मैं जहां बैठता हूं वहां पे टूलिंग सिस्टम का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, वो आगे के प्लांट में होगा, ये प्लांट में सिर्फ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा.
समझ
यस
गए।
हम लोग हेल्प जरूर लेंगे इस, क्योंकि वो पार्ट आप सोच सकते हो कि जिस चीज से एयरक्राफ्ट बनता है तो उसका एक्यूरेसी इससे बहुत क्लोज होता है उल्टे का.
ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बराबर।
सो वी आर ऑलरेडी इन क्लोज मैन्युफैक्चरिंग, क्लोज टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो फिर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, बट
बराबर
द चैलेंज इज गेट इट डन, गेट इट इनटू द सिस्टम, गेट इट इनटू देयर ओन वे ऑफ वर्किंग स्टाइल, उनका पार्ट का सेगमेंट में जाना, उनके साथ अलाइन होना, ये जो चीज है वो बहुत बड़ा काम करेगा.
बराबर है।
मुझे कोई आई हैव नो डाउट अबाउट दैट कि हम उस पार्ट को नहीं बना सकते हैं. तो
बराबर,
चैलेंज
समझ
उधर, चैलेंज उधर नहीं है, चैलेंज है उस उनके सिस्टम के साथ अलाइन होना, जो कि बिग रोल वी विल बी प्लेइंग एज अ मैनेजमेंट, क्योंकि वो बॉटम लेवल
गया।
के लोग नहीं कर सकते हैं.
तो ये जो मैं पूछ रहा था आपको, ये 20 करोड़ कैपेक्स है, वो हम एरोस्पेस प्लांट, जो
यस
सेम प्लांट में बढ़ा रहे कैपेसिटी, बराबर है।
करेक्ट,
ओके। और वो मैंने जैसे थंब रूल मोटा मोटी पूछा, वैसे वो मतलब अपना 20% कैपेसिटी बढ़ाएगा, 50%, 100% कितना बढ़ाएगा, जो अभी
टू
एग्जिस्टिंग है
पॉइंट टू
उसमें?
पॉइंट टू 2.5% बढ़ जाएगा। अगर
अच्छा
अभी एक है तो वो 2.5 हो जाएगा।
समझ गया, सो 2.5x बराबर, 2.5 गुना हो जाएगा,
अढ़ाई गुना हो सकता है, क्योंकि
समझ गया समझ
फिर
गया।
वो डिपेंड करता है, अगर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा सक्सेसफुल वेंचर हो गया और बहुत क्विकली वो कन्वर्जन मिल गया तो वो 2.5 हो जाएगा। अगर हमने टूलिंग में कंटिन्यू किया थोड़ा दिन तो वो 2 होगा, फिर धीरे धीरे होगा। बट एक मोटा मोटा ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ये हो सकता है। यस
सो 2 से 2.5 टाइम अपन समझते हैं मोटा
यस
मोटा,
यस
ठीक है ठीक है। और दूसरा दूसरा अपना 6 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए लिए हैं अपने
यस
आईपीओ में, और 5 करोड़ रीपेमेंट। तो ये
यस
6 करोड़ वर्किंग कैपिटल जो है वो टिपिकली व्हाट इज दी वर्किंग कैपिटल साइकिल, इज इट 3 months, 2 months?
90 to 120 days
अच्छा 3 से 4 महीना,
वो
समझ
ऑटोमेशन का।
गया।
अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो थोड़ा कन्वर्जन बड़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या है पेमेंट टर्म्स के ऊपर भी कभी कभी ऑर्डर को हमको टैप करना पड़ता है। जैसे गोदरेज का है पेमेंट टर्म्स, वो लोग एडवांस नहीं देते हैं, तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें
समझ गया,
55 to 60% बहुत प्रोक्योरमेंट होता है, वो भी
करेक्ट
बहुत। तो ये डिपेंड करता है वो अगेन वो ऑर्डर वैल्यू और उसके ऊपर के वो कितना लंबा चलेगा।
समझ गया समझ। और आपके ये बिजनेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कैसे देखते हैं? अपने 2 डिवीजन है, एरोस्पेस एंड ऑटोमेशन, तो
प्रोजेक्ट
यूनिट
बेस्ड
ऑफ
इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
मतलब किसी में किलोग्राम होता है, किसी में मेट्रिक टन होता है, किसी में नंबर ऑफ पीसीज होता है, किसी
नंबर ऑफ
में
प्रोजेक्ट्स,
मशीन मशीन आवर्स होते हैं, तो कैसे?
नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विच वी रिसीव्ड।
अच्छा, तो आपको अगर मेजर करना हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो आप कैसे करते हैं? क्या अभी अपना करंट यूटिलाइजेशन क्या होगा प्रोडक्शन?
अभी बिकॉज वी आर इन अ टूलिंग एंड क्योंकि टूलिंग में कैसा है, वन ऑफ कंपोनेंट होता है ना, तो बार बार मशीन को बार बार देखना पड़ता है, बार बार रुका के चेक करना पड़ता है, एक बार प्रोडक्शनाइज नहीं है वो। तो अभी हमारा
बराबर,
यूटिलाइजेशन 80-82% तक क्लियर है, एंड दैट्स अ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टूलिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करते हैं तो। क्योंकि स्पिंडल कम रन होता है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको कुछ, एक बार तुमने प्रोडक्ट बना दिया, एक बार डेवलप कर दिया और एक बार कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वही प्रोसेस को बार बार आपको रिपीट करते बैठना पड़ता है। तो सिर्फ
सही
जॉब
बात,
निकाला, जॉब निकाला, जॉब लगाया, बटन दबाया, अपना अपना टूल आया, अपना काम करके निकल गया, जॉब निकाला, फिर जॉब लगाया। तो अभी अभी शायद हमारा 75 to 82 के बीच में होगा, लेकिन जब पार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज
अच्छा तो ये
95 के
सेवन,
अबोव, 95-99 के अबोव, 99 के आसपास आ जाएगा
अच्छा
यूटिलाइजेशन।
समझ गया। तो अभी 75-80% है वो टूलिंग में,
हाँ 75 to 80-82% टूलिंग में आता है वो।
तो और दूसरा ये ग्राउंड हैंडलिंग और एमआरओ में कैसे कैपेसिटी यूज करते हैं, उसका भी सेम रहेगा या कम रहेगा?
नहीं उसका थोड़ा कम होता है इन टर्म्स ऑफ टूलिंग डिजाइन का कंटेंट ज्यादा होता है, एमआरओ का, अरे इसका ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट में कम होता है। ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट इज नथिंग बट अगर आप कोई कार खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक स्टेप नहीं देता है,
बराबर है बराबर,
उसके साथ आपको वो स्टेपनी निकालने के लिए हैंडल देता है, जैक देता है, फिर वो रोड पे रिफ्लेक्टर देता है लगाने के लिए, ये सब आपको
करेक्ट।
एडिशनल है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि कोई भी एयरक्राफ्ट कोई आदमी खरीदता है एज ए कंपनी तो उसको बहुत सारा इक्विपमेंट उसको देना पड़ता है उस कंपनी को,
बराबर,
तो वो इक्विपमेंट का भी बहुत ह्यूज कॉस्ट होता है। मतलब
अच्छा,
हम फ्रांस का एक,
उसमें भी यूटिलाइजेशन ऐसा ही है, 70-80%
यस,
है?
इट इज अ वेरी क्रिटिकल, इट इज वेरी क्रिटिकल, डिफेंस में तो ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें एम्यूनिशन एम्यूनिशन लोडिंग होता है, मिसाइल लोडिंग फिक्सचर्स होते हैं, तो मिसाइल
हाँ
जब आप लोड करते हो तो उसको ऐसा हाथ से उठा के नहीं रख सकते हैं,
बराबर है,
इट रिक्वायर्स सम मशीन्स एंड विच इज वेरी परफेक्ट। तो जैसे वो हैंडलिंग इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट के नजदीक जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो फिट हो जाना चाहिए उधर,
प्रिसीजन इज इम्पोर्टेंट,
इम्पोर्टेंट। हाँ
बराबर। तो बिकॉज अपना ये 70, ये अपना ये नया कैपेसिटी कब से चालू हो जाएगा, रेडी हो जाएगा?
सर 100% इफेक्टिवनेस उसका 6 महीने में आएगा ऐसा लग रहा है,
6 महीने में बराबर,
मशीन 3 महीने में आने का चालू हो जाएगा, 3 मंथ्स में।
बराबर है। तो 6 months में चालू हो जाएगा, और मे बी
यस यस।
एक 1.5 साल में हम लोग पूरा यूटिलाइज कर लेंगे या कम
हाँ
होगा?
नहीं, एक ही एक एक साल के पहले यूटिलाइज हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
अच्छा,
हाँ,
तो इसका इसका 1 ईयर फुल यूटिलाइज हो जाएगा?
मतलब यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा, वो कंटिन्यूस रहेगा फिर 5-3 साल तक मिनिमम।
तो वापिस 80% नया कैपेसिटी जो 2.5 गुना बढ़ जाएगा, उसको 80% पहुंचने में 1.5 साल लगेगा यहां से
नहीं नहीं नहीं
लर्निंग,
नहीं नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा शायद,
मार्च 26 में ही?
मार्च 26 में हो जाएगा। तो अभी उसके बाद क्या होगा, फिर हमने वी कीप वर्किंग इन दिस मैनर, तो फिर हमारा और मशीनरी, हमारा और ये सब चीज का अभी हमको ग्राफ बनाना है, अभी आगे का 3 साल का
समझ
प्लानिंग
गया
हमें करना
समझ।
है।
तो मार्च 26 तक मोटा मोटी अगर पूरा हम यूज कर लेंगे तो अपना अपना रेवेन्यू भी 2.5 गुना हो जाना चाहिए मार्च 26 तक, इज दैट फेयर?
नहीं ऐसा नहीं होता है, वो कैपेसिटी कुछ काम हम बाहर से भी करेंगे, तो
ओके
मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू 40-45% से बढ़ेगा, और ईयर ऑन वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि
अच्छा,
मैं अभी
मतलब
आज का
ये
कैपेसिटी से डबल का बात कर रहा हूँ ना सर।
हाँ बराबर
आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे कैपेसिटी डबल, बट वेन वी
करेक्ट।
रीच टू द 70 करोड़, और मैं वहां पे अगर मैं 40% एडिशनल बोलता हूँ तो वो 110 करोड़ हो जाता है, तो मेरा मेरा एग्जिस्टिंग प्लांट तो वो फिगर पे वर्कआउट कर दिया होता है ना।
बराबर
लेकिन
बराबर
तो हम लोग बाहर से भी कुछ सपोर्ट लेने का, वो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, बिकॉज आउटसाइड पीपल आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड फॉर डिफेंस
बराबर।
एरोस्पेस सेक्टर, वो लेवल
नहीं
उनका
तो
अभी मेच्योरिटी नहीं आया है इतना।
आप ये जो 110 करोड़ बोल रहे हो वो मार्च 26 में नहीं हो सकता है, मार्च 27 में हो सकता है, ऐसा बोल रहे? समझ
27 में तो हो ही जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मीन्स
गया समझ गया। और ये साल भी 40-50% का ग्रोथ अज्यूम करने का,
यस
मार्च 25-25?
यस यस, बस 35% तो है।
समझ गया समझ गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू यू हैव बिल्ट वेरी नाइस बिजनेस, नाउ टॉप 3 कस्टमर इज हाफ ऑफ रेवेन्यू, तो ये थोड़ा रिस्की है, बट ये बिजनेस में ऐसा ही होता है मेरे को लगता है, आई
आप मुझे
थिंक।
आपको मैं इसका जवाब, आपको मैं इसका क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितना ऑर्गेनाइजेशन मालूम है जो एयरक्राफ्ट बनाता
बराबर, ये दिस इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस,
है? दिस इज
बराबर बराबर।
नेचर, दिस इज नेचर ऑफ बिजनेस। लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन सेक्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्लोली स्लोली, तो वहां पे कस्टमर बेस बहुत बढ़ सकता है। लेकिन वहां पे कैसा होता है, बहुत देर आर लॉट ऑफ पीपल आर देर, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, तो हमको निश एरिया में रहना है। बिकॉज आप बिलीव करो या मत करो, आज नहीं है 3 साल के बाद तो हम ऑटोमेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में भी घुसने वाले हैं। यही हमारा अल्टीमेट सोच है कि हम इस ऑटोमेशन को किस तरह से एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में ला सकते हैं, उसके ऊपर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या एरिया ढूंढेंगे। बिकॉज ऑटोमेशन इज नॉर्मली रिक्वायर, आइदर यू वॉन्ट अ नंबर ऑफ क्वांटिटी मोर, और यू वॉन्ट कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, और यू वॉन्ट टू रिड्यूस द मैन पावर। तो ये
बराबर
तीन, अगर ये तीन में से कोई भी एक चीज आपको चाहिए तो आपको ऑटोमेशन में जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर में इफ यू गो इन टू द सेकेंड जोन वेयर क्वालिटी एंड द कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी रिक्वायर, तो यहाँ पे ऐसा एरिया हमें टैप करना पड़ेगा जो कि ऑटोमेशन में जाके, मतलब कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है उसको हमें अटैक करना है, टू कन्वर्ट इनटू द ऑटोमेशन सिस्टम। तो यही ऑटोमेशन सिस्टम हम किस तरह से ला सकते हैं ये सेक्टर में, वो हम देख रहे हैं।
बराबर। तो
व्हाई डोंट वी कैन
ये
अ बिल्ड व्हाई डोंट वी कैन अ बिल्डिंग समथिंग विच आपका एम्यूनेशन, आपका मिसाइल एयरक्राफ्ट के बाजू में गया, वहां पे ऐसा रोबोट ने उठाया और ऐसा मिसाइल में लगा, उधर लगा दिया, क्यों नहीं हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है।
बराबर है बराबर
अगर रिचर्ड ब्रॉन्सन आदमी को ऊपर लेके जाने का बात कर सकता है जिंदा,
है।
तो फिर हम तो धरती पे ही उसको करने को देख रहे हैं। तो
सही सही बात है,
आई थिंक दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो
समझ गया
उस
समझ गया,
इस सोच को सब में मुझे ऐसा परक्यूलेट करना पड़ेगा कि
बराबर बराबर बराबर।
पॉसिबल है।
और अपन ने ये कोई कैलब्रोज इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड में कुछ स्टेक बढ़ाया है
हाँ
रिसेंटली, वो
यस
क्या
यस,
है?
दे आर ऑल्सो इन सप्लाइंग इन नेवी डिफेंस, इट इज आउटबोर्ड मोटर है वो, मतलब अगर आप आपके लेवल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, आप कभी गोवा या कहाँ पर भी सी फेस पे जाते हो बीच पे, तो आपको वो मोटर बोट दिखता है, देखो आपके साथ
पता है या
जेट
जेट
आते हैं
स्की,
और
जेट स्की।
वो आगे बैठता है, आप पीछे बैठते हो, आपको वो घुमाता है, या तो आप आगे बैठते हो वो पीछे बैठता है, और वो पीछे से
करेक्ट,
वो हैंडल से वो ऐसा ऐसा घुमाते रहता है डायरेक्ट।
आई नो आई नो।
तो दैट इज द एंटायर सिस्टम इज अ मोटर विच इज फ्रॉम पेट्रोल राइट नाउ, आइदर इट विल बी फ्रॉम यामाहा और इट विल बी फ्रॉम
मैंने
होंडा।
यामाहा का बहुत देखा है, बराबर।
हाँ, तो ये दोनों लोग अभी पेट्रोल में करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं नेवी को, हमने उसका ट्रायल भी दे चुके हैं, तो लेट अस सी हाउ द ऑर्डर विल गेट कन्वर्ट इन टू द फाइनल।
ओके
इट
तो
इज
अभी अपना
आईडेक्स
कित
आईडेक्स प्रोजेक्ट,
अच्छा अपना कितना स्टेक है ये कंपनी में अभी, कैलब्रोज में?
26%,
तो अपन ज्यादा पूरा लेंगे
ट्वेंटी
अब?
सिक्स परसेंट 26%।
श्योर। आर वी प्लानिंग टू टेक मोर और इट विल रिमेन लाइक दिस
नो
माइनॉरिटी?
सर, अभी तो मैं उसी प्रमोटर को के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, उसको बढ़ाना
समझ
चाहता हूँ,
समझ
उसका
समझ
उसका प्रोडक्ट है,
मिलकर
उसने बिल्ड किया है, बढ़ने तो क्या फर्क पड़ता है।
नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात। तो अभी अपने इसमें प्लान
आई एम एंटरप्रेनर, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन।
आई लाइक दैट। सो ये जो अपना प्लांट और अपना ऑटोमेशन डिवीजन है, उसमें आपने बताया कंपटीशन इज वेरी हैवी, राइट?
वेरी हैवी,
तो इसमें कौन, हनीवेल इज नंबर वन,
बहुत है, हनीवेल है, पारी
सीमेंस?
है, विप्रो पारी है,
ओके
सीमेंस सीमेंस ऑटोमेशन को प्रोवाइड करने की प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन
हाँ
वो सभी प्रोडक्ट को असेंबल्ड करके एक सिस्टम जो बनाती है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, विप्रो पारी है, टाइटन है बैंगलोर में।
तो क्या मार्जिन अपना बनता है इसमें, बिडा मार्जिन कंपेयर टू एरोस्पेस?
सर दोनों का मोटा मोटा, अगर ओवरऑल कंपनी का बात करूं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग 22% पे हैं बीटा मार्जिन, और शायद
हाँ, लास्ट ईयर का 23.26 है, बराबर
हाँ
है।
22-23 तक है, मुझे लग रहा है हम लोग 27-30% तक पहुंच जाएंगे 1.5 ईयर में, और वो शायद कंटिन्यूअसली छोटा छोटा मार्जिन में भी लेकिन ग्रो होते रहेगा।
अच्छा, इसका इसका मेन ड्राइवर क्या होगा, एरोस्पेस राइजिंग मोर? तो
एरोस्पेस राइजिंग मोड,
एरो
और
में क्या मार्जिन बनते हैं अपने, 30% बनते हैं मिनिमम?
यस, क्योंकि वो बाकी सब पकड़ के मुझे लग रहा है 12 से 15% का एनपी आता है आफ्टर एवरीथिंग।
नहीं, इबिडा मार्जिन में निमेश जी, अगर मैं ऑटोमेशन देखूं और एरोस्पेस देखूं, तो
एरोस्पेस
एरोस्पेस
यस
में 30-32% बनता होगा, और
हाँ,
इसमें
बिकॉज यस
इसमें
बिकॉज
पंद्रह
उन
सत्रह टका ऐसा
20% क्योंकि उनके
बीस
पास
परसेंट
इक्विपमेंट नहीं होता है ना, ऑटोमेशन में कैसा होता है, दे डोंट रिक्वायर मशीनरी, और
करेक्ट।
एरोस्पेस में क्या है, मशीनरी के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, तो वो जो डिप्रिसिएशन जाता है ना वो बहुत हेवी जाता है, तो डिप्रिसिएशन जाता है साथ में फिर इंटरेस्ट रेट भी आ गया बाय डिफॉल्ट।
समझ गया समझ गया समझ गया।
सर
और
सॉरी टू इंटरप्ट, इन 5 मिनट्स आवर मीटिंग विल एंड बिकॉज इट्स स्टिल 3 PM, बट आई हैव जनरेटेड अनदर लिंक एंड आई हैव ईमेल्ड ऑल्सो, सो व्हेन दिस मीटिंग गॉट कट देन यू कैन ज्वाइन ऑन दैट लिंक।
या
कितना टाइम लगेगा
ओके
और?
नहीं, एक्चुअली अपन ट्राई, वी विल। अच्छा, वो कट ही हो जाएगा नहीं तो? हाँ,
यस यस इट विल
अभी
कट,
10-1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा, 10-12 मिनट।
फाइव मिनट्स सर, इट विल ऑटोमेटिकली गॉट कट।
मैं काम करता
अच्छा
हूँ सर,
हाँ जी,
ये कट हो जाएगा ना तो गिव मी 10 मिनट्स, आई एम ट्रैवलिंग, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई चैलेंज नहीं है, हम बात तो कर सकते हैं आराम से कार में, तो देन वी विल
तो
कंटिन्यू, मैं
मैं
आपको
तो अगर तो आपको कितना टाइम लगेगा ट्रैवल में, रफली
सर
अंदाजन?
मुझे 1-1.5 आवर लगेगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा लंच भी, आपका लंच हो गया?
हो गया, आई हैव डन,
हाँ, मेरा लंच बाकी है, तो मैं लंच कर लेता हूँ, आधे घंटे में मैं आपको फोन करता हूँ सीधा आपके नंबर पे ही,
ठीक
ठीक
है
है? इज दैट ओके? हाँ,
चलेगा सर, तो हम फोन पे बात कर सकते हैं, ये जूम कॉल का जरूरत है क्या आगे अपने को?
नो
नहीं,
सर, आई जस्ट रैप अप दिस कॉल फॉर कंप्लायंस पार्ट, So,
ठीक है,
to end this call, I once again intimate that the attendees were Mr. Rajesh Vora from Genmay Venture Advisor and Mr. Nimesh Desai, Managing Director of Techera. And I hereby confirm that no unpublished price sensitive information was shared in this meeting. Okay.
sure,
So,
thank you.
Rajesh sir, we will surely welcome you from in as an investor in future.
Sure.
So, whatever your queries, you can discuss with Nimesh sir later
Sure.
on. So, I'll
Sure.
end up this meeting as of now.
Sure.
Okay.
Thank you.
Thank you,
Given that we
Nimesh
have something else lined up, thank you.
sir.
Yes.
Sir, and I welcome you into the company, sir, anytime.
Sure.
Yes.
वो visit का